एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में अनगिनत लोगों के निवेश करने के तरीके को बदला है, बल्कि शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि निवेश के बारे में सोचने के तरीके को ही बदल दिया है। किताब है बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर।
नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ आप कह सकते हैं शेयर बाजार की तकनीकों पर लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि ये पैसे को लेकर एक समझदार, एक अनुशासित और यहां तक कि एक शांत नजरिया विकसित करने के बारे में है।
हाँ,
और देखिए, आज के दौर में जहां बाजार में रोज उतार चढ़ाव होता है, हर तरफ से सलाह जानकारी की जैसे बौछार होती है,
बिल्कुल।
ग्राहम के सिद्धांत शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एक निवेशक के तौर पर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारा असल लक्ष्य क्या होना चाहिए।
हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। ये सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं, मतलब डर और लालच, इनको काबू में रखते हुए तर्क और विश्लेषण के आधार पर फैसले लिए जाएं।
हाँ,
कैसे अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न कमाया जाए।
बिल्कुल
ऐसा नहीं कि रातों रात अमीर बनने के सपने देखें।
सही बात।
तो चलिए इस बेहतरीन किताब के विचारों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें इससे क्या सीख सकते हैं।
बिल्कुल।
तो शुरुआत करते हैं लेखक बेंजामिन ग्राहम से। उन्हें अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहा जाता है।
मतलब फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। दिलचस्प बात है कि ग्राहम वैसे तो 1894 में लंदन में जन्मे थे, लेकिन बचपन में ही उनका परिवार न्यूयॉर्क आ गया था और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जो बाद में उनके विचारों का एक बड़ा केंद्र बना।
और जैसा आपने कहा, उनका अनुभव सिर्फ किताबी नहीं था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर काम किया, अपनी सफल निवेश फर्म चलाई, ग्राहम न्यूमन कॉरपोरेशन, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने 1929 की महामंदी, मतलब ग्रेट डिप्रेशन, को न सिर्फ देखा बल्कि झेला भी। कहते हैं उस दौर के नुकसान ने उन पर बहुत गहरा असर डाला था।
बिल्कुल। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें बाजार के शोर शराबे, अटकलबाजी, सट्टेबाजी, इन सब के प्रति इतना शंकालु बना दिया। वो जोखिम से बचने वाले तर्कसंगत निवेश सिद्धांतों के पक्के हिमायती बन गए। उनकी बात में वजन इसलिए भी है क्योंकि वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बनाते थे,
हाँ,
वो खुद एक बेहद सफल निवेशक थे। और इसके साथ ही उन्होंने सालों तक कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाया भी। वहां उन्होंने अपने विचार अनगिनत छात्रों तक पहुंचाए।
और उन्हीं छात्रों में से एक थे वॉरेन बफे, जिन्होंने इस किताब को कहा है कि ये निवेश पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ किताब है। बफे हमेशा कहते हैं कि ग्राहम ने उन्हें सिर्फ निवेश का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि निवेश का सही नजरिया, सही टेम्परमेंट दिया।
सही बात।
ग्राहम की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि उन्होंने जटिल वित्तीय विश्लेषण को आम निवेशक के लिए समझने लायक सरल और व्यवहारिक सिद्धांतों में बदल दिया।
उन्होंने निवेश को जैसे एलीट क्लास के दायरे से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। तो आते हैं किताब पर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये है किस बारे में? जैसा हमने शुरू में कहा, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम या हॉट स्टॉक टिप्स देने वाली किताब तो बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल नहीं।
बल्कि ये लंबी अवधि में सफल निवेश के लिए जरूरी मानसिक अनुशासन, सही स्वभाव जिसे वो टेम्परामेंट कहते हैं, और विश्लेषण का एक मजबूत ढांचा, एक फ्रेमवर्क बनाने की गाइड है। इसका असली लक्ष्य पाठक को एक बुद्धिमान निवेशक बनने में मदद करना है, ना कि सिर्फ अमीर निवेशक।
हाँ, और बुद्धिमान से ग्राहम का मतलब कोई सुपर हाई आईक्यू वाला होना नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
मतलब है भावनात्मक रूप से अनुशासित होना, तार्किक होना। किताब का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आम निवेशक को जोखिम प्रबंधन, मतलब रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करके एक सुरक्षित और समृद्ध वित्तीय भविष्य बनाने के लिए जैसे बौद्धिक हथियार देना।
बिल्कुल। और इसी कड़ी में ग्राहम दो तरह के निवेशकों की भूमिका को बहुत साफ तौर पे परिभाषित करते हैं।
हाँ,
पहला, रक्षात्मक यानी डिफेंसिव निवेशक, जो मुख्य रूप से सुरक्षा चाहते हैं, सरलता चाहते हैं और शायद निवेश पर बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते। और दूसरा, उद्यमशील यानी एंटरप्राइजिंग निवेशक, जो ज्यादा मेहनत, शोध और विश्लेषण करके औसत से बेहतर रिटर्न कमाने की कोशिश करने को तैयार हैं।
अच्छा,
और किताब इन दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए उनकी भूमिका के हिसाब से स्पष्ट रणनीति और लक्ष्य बताती है।
ये नहीं कहती कि एक दूसरे से बेहतर है।
हाँ, बस ये कि आपको पता हो कि आप कौन हैं।
एग्जैक्टली।
आपकी क्षमता और इच्छा क्या है।
जी, क्लैरिटी होनी चाहिए।
बिल्कुल।
और सबसे पहले किताब हमें निवेश यानी इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेटिंग के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्पष्ट रेखा खींचना सिखाती है। ये शायद इसका सबसे बुनियादी सबक है। ग्रहम की परिभाषा बहुत साफ है। निवेश का आधार है गहन विश्लेषण, मूलधन की सुरक्षा का वादा और पर्याप्त मतलब संतोषजनक रिटर्न की उम्मीद।
सही है।
जो प्रक्रिया इन तीन शर्तों को पूरा नहीं करती वो सट्टेबाजी है, सीधी बात।
और वो चेतावनी भी देते हैं कि इन दोनों को मिलाना बहुत खतरनाक है, मतलब निवेश के नाम पर सट्टा करना या सट्टे को निवेश समझ लेना।
हाँ, ये बहुत लोग करते हैं शायद।
बिल्कुल।
फिर ये किताब हमें निवेश के मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से भी रूबरू कराती है, खासकर उनके सबसे प्रसिद्ध रूपक मिस्टर मार्केट के जरिए। ये हमें सिखाता है कि बाजार के रोजाना के मूड स्विंग से कैसे निपटना है।
मिस्टर मार्केट, उस पे आएंगे। इसके अलावा किताब पोर्टफोलियो नीति पर विस्तार से बात करती है, मतलब आपके निवेश का कितना हिस्सा शेयरों में हो, कितना बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर।
हाँ, एसेट एलोकेशन जिसे कहते हैं।
हाँ, ये शेयरों को चुनने के लिए ठोस व्यवहारिक मानदंड भी देती है। और इन सब विचारों के केंद्र में है ग्राहम का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, सुरक्षा का मार्जिन यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
बिल्कुल। इसी मजबूत नींव पर उनकी पूरी निवेश की फिलॉसफी, उनका दर्शन टिका है।
चलिए, अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं, देखते हैं ग्राहम क्या कहते हैं। अध्याय एक, निवेश बनाम सट्टेबाजी। हाँ, तो यहाँ ग्राहम अपनी वो प्रसिद्ध परिभाषा देते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की, लेकिन वो एक और अहम बात कहते हैं कि सट्टेबाजी अपने आप में बुरी नहीं है।
अच्छा।
अगर आप जानते हैं कि आप सट्टा कर रहे हैं और उसके लिए अलग से सीमित पैसा रखते हैं, मतलब जानकर कर रहे हैं।
हाँ।
समस्या तब होती है जब आप सट्टेबाजी को निवेश समझ बैठते हैं। अपनी भूमिका को लेकर आप क्या कर रहे हैं उसको लेकर स्पष्टता बहुत जरूरी है।
एकदम सही।
अध्याय दो, निवेशक और मुद्रास्फीति,
इन्फ्लेशन।
ये अध्याय एक ऐसे दुश्मन पर ध्यान दिलाता है जिसे हम अक्सर मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, महंगाई।
हाँ, ये साइलेंट किलर है एक तरह से।
बिल्कुल। ग्राहम समझाते हैं कि सिर्फ कैश या पारंपरिक बॉन्ड में पैसा रखना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे आपकी दौलत की खरीदने की शक्ति मतलब परचेजिंग पावर को खा जाती है।
उनका तर्क है कि कॉमन स्टॉक, जो कि असल कारोबार में हिस्सेदारी है, लंबी अवधि में महंगाई से बचाव का एक बेहतर जरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छी कंपनियां समय के साथ अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमतें बढ़ा सकती हैं।
सही बात है। ये लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए शेयरों में निवेश की जरूरत को भी रेखांकित करता है।
बिल्कुल।
इसके बाद अध्याय तीन, शेयर बाजार के इतिहास की एक सदी। यहाँ ग्रहम हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखने को कहते हैं। वे दिखाते हैं कि शेयर बाजार हमेशा से तेजी बुल मार्केट और मंदी बेयर मार्केट, इन चक्रों से गुजरता रहा है। अत्यधिक आशावाद जब सब खरीदने दौड़ते हैं और अत्यधिक निराशावाद जब सब बेचने लगते हैं, दोनों ही अस्थाई होते हैं। कोई भी चरम स्थिति हमेशा नहीं टिकती।
अच्छा।
यहाँ से मिलने वाला असली सबक या इनसाइट सिर्फ ये जानना नहीं है कि ऐसा होता है, बल्कि इस ज्ञान को आज के शोर शराबे में शांत रहने के हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। ये याद दिलाता है कि हर बुलबुला फूटता है और हर मंदी खत्म होती है, इसलिए भीड़ के साथ बहने की बजाय अपनी तय की हुई भूमिका और रणनीति पर टिके रहें।
बहुत खूब कहा। अब आते हैं अध्याय चार, रक्षात्मक निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति। ये उन निवेशकों के लिए हैं जो ज्यादा कह सकते हैं माथा पच्ची नहीं चाहते, बस एक सरल और सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहते हैं।
हाँ, मतलब सिंपल रखना चाहते हैं।
हाँ, ग्राहम यहाँ एक सीधी साधी रणनीति सुझाते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स और जानी मानी स्थिर कंपनियों के शेयरों का मिला जुला पोर्टफोलियो, उनका मशहूर 50-50 नियम।
हाँ, 50% शेयर 50% बॉन्ड,
एक शुरुआती बिंदु के तौर पर यहीं से आता है।
हाँ, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समझना जरूरी है। ग्राहम खुद कहते हैं कि शेयरों में हिस्सेदारी कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 75% के बीच होनी चाहिए।
अच्छा।
विचार ये है कि एक रक्षात्मक निवेशक अपनी भूमिका के तहत बाजार के मूल्यांकन के आधार पर इस अनुपात को थोड़ा बहुत बदल सकता है।
कैसे?
50% या उससे कम, जैसे 25% तक कर दें। और जब बाजार बहुत सस्ता लगे, सब डरे हुए हों, निराशावादी हों, तो इसे बढ़ाकर 50% से ज्यादा, जैसे 75% तक कर सकते हैं। ये एक तरह का ऑटोमेटिक अनुशासन है।
ओके, ये दिलचस्प है। अब सवाल उठता है कि रक्षात्मक निवेशक शेयर कैसे चुने। अध्याय 5 रक्षात्मक निवेशक और कॉमन स्टॉक इसी का जवाब देता है।
हाँ, यहाँ ग्राहम एक चेकलिस्ट देते हैं जो सरलता और सुरक्षा पर केंद्रित है।
क्या है वो पॉइंट्स?
पहला, पर्याप्त विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन। एक दो शेयरों पर दांव ना लगाएं, कम से कम 10 से 30 अलग अलग अच्छी कंपनियों के स्टॉक हों।
हाँ?
दूसरा, बड़ी और प्रमुख कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो अपने उद्योग में लीडर हों, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, साख अच्छी हो, जिन्हें हम अक्सर ब्लू चिप कहते हैं।
राइट, बड़ी जानी मानी स्थिर कंपनियां।
बिल्कुल। तीसरा, मजबूत वित्तीय स्थिति, कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा ना हो, उसकी बैलेंस शीट मजबूत हो।
ओके।
चौथा, लगातार डिविडेंड का इतिहास, कंपनी ने पिछले कई सालों से जैसे 20 साल लगातार डिविडेंड दिया हो, यह उसकी स्थिरता और मुनाफे का संकेत है।
अच्छा।
पांचवा, लंबी अवधि में मुनाफे में वृद्धि, पिछले 10 सालों में कंपनी की कमाई में कुछ बढ़ोतरी का रिकॉर्ड हो। और छठा, मूल्यांकन का सही स्तर, मतलब शेयर बहुत ज्यादा महंगा ना हो। यहाँ ग्रहम कुछ रेशियोज की बात करते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग्स बी रेशियो और प्राइस टू बुक पीबी रेशियो।
हाँ, सुना है इनके बारे में। पी मतलब कीमत कमाई का कितना गुना है और पीबी मतलब कीमत कंपनी की बुक वैल्यू की तुलना में कैसी है।
एग्जैक्टली। ग्रहम चाहते हैं कि ये अनुपात बहुत ज्यादा ना हो, मतलब जरूरत से ज्यादा कीमत ना चुकाएं।
समझ गई। तो ये नियम रक्षात्मक निवेशक के लक्ष्य यानी पूंजी की सुरक्षा और ठीक ठाक रिटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
बिल्कुल। अब आते हैं अध्याय 7, उद्यमशील निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति। सकारात्मक पक्ष, ये उन निवेशकों के लिए है जो अपनी भूमिका को ज्यादा सक्रिय देखते हैं और ज्यादा मेहनत, ज्यादा विश्लेषण करने को तैयार हैं। ग्रहम यहाँ कुछ ऐसे रास्ते सुझाते हैं जहाँ औसत से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन हाँ, जोखिम भी ज्यादा होता है।
जैसे कि?
पहला, अस्थायी रूप से नापसंद की जा रही बड़ी कंपनियां खरीदना। जब कोई अच्छी बड़ी कंपनी किसी अस्थायी कारण से बाजार की नजरों से उतर जाए और उसका शेयर सस्ता हो जाए।
अच्छा।
दूसरा, बार्गेन इश्यू खोजना, ये क्लासिक ग्रहम रणनीति है। ऐसे शेयर ढूंढना जो अपनी नेटवर्किंग कैपिटल से भी कम कीमत पर मिल रहे हों।
ये कैसे हो सकता है?
होता है कभी कभी। ये ऐसा है जैसे आप एक बटवा खरीदें जिसके अंदर बटवे की कीमत से ज्यादा पैसे हों।
वाह।
तीसरा, सेकेंडरी कंपनियों का विश्लेषण, छोटी लेकिन अच्छी तरह से प्रबंधित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां जिन्हें बड़ा बाजार अक्सर नजरअंदाज कर देता है। और चौथा, विशेष स्थितियों में निवेश, जैसे कि कंपनियों के विलय और अधिग्रहण मतलब मर्जर और एक्विजिशन, या उनके पुनर्गठन से जुड़े अवसर जहां विश्लेषण से फायदा उठाया जा सकता है।
साफ है कि उद्यमशील निवेशक की भूमिका ज्यादा रिसर्च और धैर्य की मांग करती है, ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं।
बिल्कुल। अब आते हैं उस अध्याय पर जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, अध्याय 8, निवेशक और बाजार के उतार चढ़ाव। यहीं पर ग्राहम अपने अमर किरदार मिस्टर मार्केट को पेश करते हैं।
हाँ, मिस्टर मार्केट, बताइए इसके बारे में।
कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, नाम है मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके ऑफिस आता है और आपको आपके बिजनेस में यानी आपके शेयर में अपना हिस्सा खरीदने या आपको अपना हिस्सा बेचने का एक भाव देता है रोज।
ठीक है।
और मिस्टर मार्केट बड़ा ही मनमौजी है, कभी वो बेहद उत्साहित होता है यूफोरिक, और आपके हिस्से के लिए बहुत ऊंचा भाव लगाता है। कभी वो बहुत निराश होता है डिप्रेस्ड, और अपना हिस्सा आपको बहुत ही कम कीमत पर बेचने को तैयार हो जाता है।
अच्छा।
ग्रहम की सबसे बड़ी सीख यहाँ यह है, मिस्टर मार्केट आपका पार्टनर है, आपका मालिक नहीं। आप उसके रोज के प्रस्ताव को चाहे तो माने चाहे तो पूरी तरह अनदेखा कर दें। आपको उसके साथ रोज सौदा करने की कोई मजबूरी नहीं है।
बिल्कुल। समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट की इस भावुकता, इस इमोशन का फायदा उठाता है।
कैसे?
जब मिस्टर मार्केट निराशावादी होकर सस्ते में शेयर बेच रहा हो तब खरीदता है, और जब वो बेहद आशावादी होकर महंगे दाम लगा रहा हो तब उसे बेचने पर विचार करता है। लेकिन किसी भी हालत में वो मिस्टर मार्केट के रोज बदलते मूड को अपने बिजनेस की असली कीमत तय नहीं करने देता, अपनी समझ पर भरोसा रखता है।
कहना आसान है, असल में जब बाजार तेजी से गिर रहा होता है तो डर हावी हो ही जाता है।
हाँ, वो तो है।
और जब सब खरीद रहे होते हैं तो फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट सताता है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं।
सही बात है।
ग्राहम की यही बात शायद सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक अनुशासन मांगती है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना और मिस्टर मार्केट के शोर से प्रभावित हुए बिना अपने विश्लेषण और अपनी भूमिका पर टिके रहना।
सही कहा। आगे अध्याय 11, आम निवेशक के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस, यहाँ ग्राहम दिखाते हैं कि कंपनी का विश्लेषण करने के लिए आपको कोई अकाउंटिंग विजर्ड होने की जरूरत नहीं है।
हाँ, ये बहुत राहत की बात है आम निवेशक के लिए।
बिल्कुल, वे आम निवेशक के लिए एक सरल तरीका सुझाते हैं। कंपनी की लंबी अवधि की कमाई क्षमता पर ध्यान दें, जैसे पिछले 7-10 साल का औसत देखकर। उसकी पूंजी संरचना यानी कर्ज का स्तर देखें और मुनाफे का मार्जिन समझें। यहाँ लक्ष्य किसी शेयर का एकदम सटीक आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना नहीं है।
हाँ, वो बहुत मुश्किल है वैसे भी।
हाँ, लक्ष्य ये अंदाजा लगाना है कि मौजूदा बाजार भाव में सुरक्षा का पर्याप्त मार्जिन है या नहीं।
और यही हमें ले आता है किताब के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर, अध्याय 20, सुरक्षा का मार्जिन, निवेश की केंद्रीय अवधारणा।
ग्रहम इसे सब कुछ समेटते हुए पेश करते हैं। सुरक्षा का मार्जिन क्या है? सरल शब्दों में ये किसी चीज के आंतरिक मूल्य, मतलब उसकी असली अनुमानित कीमत और उसकी बाजार कीमत के बीच का अंतर है।
ओके।
ग्रहम कहते हैं कि ये निवेश के 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
ये मार्जिन क्यों जरूरी है?
क्योंकि भविष्य अनिश्चित है ना, आपके विश्लेषण में गलती हो सकती है।
हो सकती है।
अर्थव्यवस्था में या कंपनी के साथ कुछ बुरा हो सकता है या बाजार बेवजह गिर सकता है। सुरक्षा का ये मार्जिन इन्हीं अनिश्चितताओं और गलतियों के खिलाफ आपका कुशन या बफर है।
जैसे गाड़ी चलाते वक्त आगे वाली गाड़ी से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं।
बिल्कुल वही, ताकि अचानक ब्रेक आने पर टक्कर ना हो। यही है सुरक्षा का मार्जिन। यही सुरक्षित और मुनाफे वाले निवेश का रहस्य है जो आपकी पूंजी बचाने के लक्ष्य को पूरा करता है।
बहुत अच्छा समझाया। तो इस पूरी किताब से मुख्य संदेश या की थीम्स क्या निकलते हैं? अगर हमें कुछ बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी?
पहला और सबसे बुनियादी तो मेरे हिसाब से है निवेश बनाम सट्टेबाजी का फर्क समझना। ये जानना कि आप क्या कर रहे हैं, विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन पर आधारित निवेश या सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर दाव लगाना, यानी सट्टेबाजी। और अपनी भूमिका, मतलब आप डिफेंसिव हैं या एंटरप्राइजिंग, और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
बिल्कुल। दूसरा, मिस्टर मार्केट का रूपक। ये हमें सिखाता है कि बाजार की भावनाओं यानी भीड़ के डर और लालच से खुद को कैसे अलग रखें।
हाँ,
ये हमें अस्थिरता को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना सिखाता है। जैसे सब्जी मंडी में जब टमाटर अचानक सस्ते हो जाते हैं तो समझदार खरीदार ज्यादा खरीद लेता है ना, न कि घबरा जाता है। मिस्टर मार्केट की निराशा आपके लिए मौका बन सकती है।
सही है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा किसी भी चीज की कीमत उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम अदा करने की कोशिश करना। ये सिर्फ निवेश में ही नहीं, जीवन के हर बड़े वित्तीय फैसले में काम आ सकता है। ये आपकी गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ आपका सुरक्षा कवच है। ये सिद्धांत ही निवेशक के पूंजी सुरक्षित रखने वाले मूल लक्ष्य को सुनिश्चित करता है।
चौथा, बिजनेस ओनर वाली मानसिकता विकसित करना। शेयर को सिर्फ एक टिकर सिंबल या स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर की तरह ना देखें।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
बल्कि उसे एक असली कारोबार में अपनी हिस्सेदारी समझें। जब आप खुद को मालिक की तरह सोचेंगे तो आपका ध्यान कंपनी के लंबी अवधि के प्रदर्शन, उसके मुनाफे, उसकी ग्रोथ पर जाएगा, ना कि शेयर की रोज की कीमत के उतार चढ़ाव पर।
इससे धैर्य आता है और आप अपनी निवेशक की भूमिका को बेहतर ढंग से निभा पाते हैं।
और पांचवां, इतिहास और विनम्रता का महत्व। ग्राहम बार बार याद दिलाते हैं कि बाजार में लालच और डर के चक्र, मतलब साइकिल्स, हमेशा चलते रहे हैं और शायद हमेशा चलते रहेंगे।
इतिहास खुद को दोहराता है, कहते हैं ना।
हाँ, भले हर बार थोड़ा अलग अंदाज में। ये जानने से हमें विनम्रता आती है कि हम भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते, और निवेश में अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। अपनी सीमाओं को जानना एक बुद्धिमान निवेशक की निशानी है।
बिल्कुल। किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो सीधे दिलो दिमाग पर असर करती हैं। कुछ यादगार विचारों पर बात करते हैं।
हाँ, जरूर।
पहली तो वही परिभाषा, एक निवेश प्रक्रिया वह है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करती है। जो प्रक्रियाएं इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती वे सट्टेबाजी हैं।
ये इतनी स्पष्ट है, 3 कसौटियां, विश्लेषण, सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न। अगर ये आपकी प्रक्रिया में नहीं है तो आप शायद निवेश नहीं सट्टा कर रहे हैं। ये हमें अपनी भूमिका और गतिविधि को सही नाम देने में मदद करता है।
बिल्कुल। दूसरी, बुद्धिमान निवेशक एक यथार्थवादी रियलिस्ट होता है जो आशावादियों को बेचता है और निराशावादियों से खरीदता है।
ये भीड़ के विपरीत चलने मतलब कंट्रेरियन होने का सार है। जब बाजार में डर का माहौल हो, सब बेच रहे हों, निराशावादी हों, तब एक बुद्धिमान निवेशक खरीदने के मौके तलाशता है। और जब सब लालच में खरीद रहे हों, बाजार में यूफोरिया हो, आशावादी हो, तब वो बेचने या कम से कम सावधान रहने पर विचार करता है। ये मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाने की कला है।
सही। तीसरी जो उनके दर्शन का केंद्र है, अगर ध्वनि निवेश के रहस्य को तीन शब्दों में समेटने की चुनौती दी जाए तो हम आदर्श वाक्य पेश करेंगे, सुरक्षा का मार्जिन।
बस यही तीन शब्द। निवेश में सफलता का राज इसी में छिपा है। ये सुरक्षा का बफर आपको तब बचाता है जब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, और अक्सर ऐसा होता है।
हाँ, ये सीधे तौर पर पूंजी सुरक्षा के लक्ष्य से जुड़ा है।
और चौथी, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, जीवन भर सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए असाधारण बुद्धि, स्ट्रेटोस्फेरिक IQ, असामान्य व्यावसायिक अंतर्दृष्टि या अंदरूनी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। जिसकी आवश्यकता है वो है निर्णय लेने के लिए एक ठोस बौद्धिक ढांचा और भावनाओं को उस ढांचे को नष्ट करने से रोकने की क्षमता।
ये कितनी राहत देने वाली बात है ना।
हाँ बिल्कुल।
ये कहती है कि सफलता आपके दिमागी घोड़े दौड़ाने की क्षमता से ज्यादा आपके स्वभाव, आपके अनुशासन और आपकी भावनाओं पर काबू पाने की क्षमता पर निर्भर करती है। यानी एक आम इंसान भी सही रवैये और ढांचे के साथ एक सफल निवेशक बन सकता है। ये निवेश को लोकतांत्रिक बनाता है और व्यक्ति के अपने व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है कि वो अपनी चुनी हुई भूमिका को कैसे निभाता है।
अब सबसे बड़ा सवाल, इन महान विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की निवेश यात्रा में कैसे उतारें? इन्हें सिर्फ पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्शन जरूरी है। एक बहुत अच्छा और व्यवहारिक तरीका है अपना निवेशक नीति वक्तव्य, इन्वेस्टर पॉलिसी स्टेटमेंट बनाना।
हाँ, ये क्या है, थोड़ा और बताइए।
ये एक तरह का लिखित दस्तावेज है जिसमें आप खुद के लिए कुछ नियम तय करते हैं, जैसे मैं किस तरह का निवेशक हूँ, रक्षात्मक या उद्यमशील, मेरे वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, मेरी संपत्ति का बंटवारा कैसा होगा, कितना प्रतिशत शेयर, कितना बॉन्ड या अन्य।
ओके।
मैं किन सिद्धांतों के आधार पर निवेश करूंगा, किन स्थितियों में मैं अपनी योजना से नहीं हटूंगा, ये मुश्किल समय में जब भावनाएं हावी होने लगती हैं।
हाँ, जब डर लगता है या लालच आता है।
एग्जैक्टली। तब ये आपको आपकी तय की हुई भूमिका और लक्ष्यों की याद दिलाएगा और सही रास्ते पर रखेगा, एक तरह का एंकर।
ये बहुत अच्छा आइडिया है। रक्षात्मक निवेशकों के लिए एक और बढ़िया तरीका हो सकता है निवेश को ऑटोमेट करना।
हाँ, जैसे SIP।
हाँ, जैसे भारत में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP बहुत लोकप्रिय है। इसके जरिए हर महीने एक निश्चित रकम अपने आप किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे इंडेक्स फंड में निवेश हो जाती है। इससे आपको बाजार के उतार चढ़ाव का औसत लाभ मिलता है, जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और आपको रोज रोज बाजार देखकर फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
हाँ, ये ग्राम के अनुशासन वाले सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक शानदार तरीका है। ऑटो पायलट पर डाल दो।
बिल्कुल।
अपनी सूचना खुराक यानी इन्फॉर्मेशन डाइट को नियंत्रित करना भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है।
मतलब
रोज की बाजार की खबरें, टीवी चैनलों पर चीखते चिल्लाते एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया पर हॉट टिप्स देने वाले गुरु।
हाँ हाँ, बहुत शोर है।
ये सब अक्सर डर या लालच पैदा करते हैं और आपको आपकी रणनीति से भटका सकते हैं। ग्राहम की सलाह होगी कि इस शोर से बचें।
तो क्या करें?
इसके बजाय अपना समय उन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने में लगाएं जिनमें आपकी रुचि है, या निवेश पर ग्राहम जैसी अच्छी टाइमलेस किताबें पढ़ें। इससे आपका ध्यान सिग्नल पर रहेगा, नॉइज पर नहीं।
सही कहा। और सुरक्षा के मार्जिन का सिद्धांत, क्या ये सिर्फ शेयरों पर ही लागू होता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे जीवन की दूसरी बड़ी खरीदारी पर भी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए आप घर या गाड़ी खरीद रहे हैं। खुद से पूछें, इसका असली अंदाजन मूल्य क्या है, मैं इसके लिए क्या कीमत चुका रहा हूँ, क्या इस कीमत और मूल्य के बीच सुरक्षा का पर्याप्त मार्जिन है।
अच्छा।
क्या मैंने कुछ गड़बड़ होने की गुंजाइश रखी है, जैसे नौकरी चले जाना, ब्याज दरें बढ़ जाना? ये आपको बड़े वित्तीय झटकों से बचा सकता है, थोड़ा बफर रखना।
ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है।
और शायद सबसे बड़ा मानसिक बदलाव जो ये किताब ला सकती है वो है बाजार की गिरावट का स्वागत करना सीखना।
गिरावट का स्वागत? ये कैसे, डरने लगेगा।
हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक समझदार तैयार निवेशक गिरावट को तबाही नहीं बल्कि एक सेल या डिस्काउंट ऑफर की तरह देखता है।
अच्छा, जैसे मॉल में सेल लगती है।
बिल्कुल, ये अच्छी कंपनियों के शेयरों को उनकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदने का मौका होता है, अगर आपने पहले से अपना होमवर्क कर रखा है।
मतलब पता है कि क्या खरीदना है और किस भाव पे।
हाँ, यानी तय कर रखा है कि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं और आप उन्हें किस कीमत के आसपास खरीदना चाहेंगे, तो बाजार की गिरावट आपके लिए दोस्त बन जाती है, दुश्मन नहीं। ये मिस्टर मार्केट के निराशावाद का फायदा उठाना है जो आपकी निवेशक भूमिका का एक अहम हिस्सा बन सकता है।
वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि निवेश में सफलता आपकी दिमागी तेजी या आपके चुने हुए स्टॉक से ज्यादा आपके व्यवहार, आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। हम कितने भी विश्लेषण कर लें, अगर हम डर और लालच के क्षणों में बह जाते हैं तो हम गलतियां करेंगे ही। ग्राहम का पूरा ढांचा असल में हमें अपनी ही भावनाओं और मानवीय कमजोरियों से बचाने के लिए बनाया गया है।
सही बात।
ये बुद्धि से ज्यादा स्वभाव का खेल है और ये समझना निवेशक की भूमिका के लिए केंद्रीय है।
और मेरे लिए दो बातें सबसे ज्यादा असरदार हैं। पहला, मिस्टर मार्केट का रूपक। ये इतनी खूबसूरती से हमें याद दिलाता है कि बाजार की रोज की उठापटक को नजरअंदाज करना और अपने तर्क और विश्लेषण पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। दूसरा, सुरक्षा का मार्जिन। ये सिर्फ निवेश का सिद्धांत नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है। हमेशा अनिश्चितता के लिए थोड़ी गुंजाइश रखना।
सही है।
ये समझना कि कीमत और मूल्य, प्राइस और वैल्यू, दो अलग चीजें हैं और हमेशा मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना यही शायद बुद्धिमानी है। ये किताब दिमाग से ज्यादा स्वभाव पर जोर देती है और यही इसे आज भी प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाता है।
बिल्कुल।
ये हमें सिखाती है कि निवेशक की भूमिका क्या है और उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। पूंजी की सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न, न कि सिर्फ अंधाधुंध मुनाफा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।